हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। इस वक्त विवान, अक्षत और नैना कार में थे। उनका ड्राइवर कार चला रहा था और विवान आगे ड्राइवर के साथ पैसेंजर सीट पर बैठा था। पीछे की सीट पर नैना और अक्षत बैठे हुए थे। नैना बहुत घबराई हुई थी और घबराहट में खिड़की के बाहर देखते हुए अपने नाखून को तर रही थी। अक्षत ने उसे ऐसा करते हुए देखा और उसका हाथ पकड़कर उसे नाखून चबाने से रोकते हुए बोला, बस करो नैना, उंगलियां भी खा जाओगी क्या अपनी। अक्षत की ये बात सुनकर नैना ने तुरंत मुड़कर उसकी तरफ देखा और बोली, एक तो मैं पहले से इतनी ज्यादा नर्वस हूं और ऊपर से तुम, इस तरह से कोई कंसोल करता है क्या यार? कुछ ऐसा बोल दो जिससे मैं थोड़ी रिलैक्स फील करूं। पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा डरी घबराई हुई हो। मेरे पेरेंट्स कोई जंगली आदमखोर या फिर राक्षस नहीं है जो तुम्हें देखते ही खा जाएंगे, अक्षत अपनी आंखें घुमाते हुए बोला। उसकी बात सुनकर आगे वाली सीट पर बैठा विवान अपना मुंह छुपाकर हंसा, लेकिन उसके हंसने की आवाज निकल गई जिसकी वजह से नैना और अक्षत दोनों ने उसे नोटिस कर लिया, लेकिन किसी ने भी उससे कुछ नहीं बोला। बल्कि नैना अपना गुस्सा अक्षत पर ही निकालते हुए बोली, अरे मैंने ऐसा कब कहा, लेकिन हम दोनों इतने दिन से साथ में हैं, लेकिन फिर भी अब तक तुमने शायद मेरे बारे में भी नहीं बताया होगा अपने घर में। तो फिर अगर वे लोग मुझसे मिलेंगे तो हो सकता है मुझे भी रागिनी जैसी ही कोई लड़की समझ लें जो तुम्हारे पैसे और नाम की वजह से तुम्हारे पीछे। ये बात बोलते हुए नैना बहुत मायूस हो गई और अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई क्योंकि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अपने बारे में ये सब कुछ सोचकर बोलते हुए ही उसे बुरा लग रहा था, लेकिन वो जानती थी कि किसी और को ऐसा सोचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि उसके और अक्षत की हैसियत में बहुत ज्यादा फर्क है। अक्षत इन सब चीज़ों को नहीं मानता था और अपनी दिल की फीलिंग और प्यार को सबसे ऊपर रखता था, लेकिन बाकी सारे लोग तो ऐसे नहीं होते, ये बात भी नैना को अच्छी तरह से पता थी। नैना की बातें सुनकर अब अक्षत को समझ में आया कि आखिर वो किन बातों को लेकर इतना डर रही है। तो फिर अक्षत अपनी सीट पर खिसक कर थोड़ा सा उसकी तरफ आया और फिर उसका हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़कर उसके हाथ पर हल्के से थपकी देते हुए बोला, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और भले ही तुम पहली बार मिल रही हो लेकिन मैंने मॉम को तुम्हारे बारे में बताया है और वो तुमसे मिलने के लिए एक्साइटेड भी है। इसके अलावा अगर किसी को ऐसी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ में, बोल दूंगा कि मैंने तुम्हें प्रपोज किया था और तुम मेरे पीछे नहीं पड़ी हुई हो और उस रागिनी या किसी भी लड़की के साथ तुम्हारा कोई कंपैरिजन नहीं है। नैना अक्षत के मुंह से शायद ऐसा ही कुछ सुनना चाहती थी, इसीलिए ये बातें सुनकर उसे बहुत अच्छा फील हुआ और इतनी देर में पहली बार उसने हल्का सा मुस्कुराकर अक्षत की तरफ देखा और फिर उसके कंधे पर अपना सर झुका लिया। अक्षत ने भी उसके सिर पर अपना हाथ फेरा और गाड़ी उनके माँ बाप के घर की तरफ बढ़ने लगी जो कि शहर से थोड़ा दूर, शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर एक VIP एरिया में था। उनकी प्राइवेसी के लिए ही अक्षत ने उनके लिए वो बंगला सिलेक्ट किया था क्योंकि अगर वे लोग शहर में रहते तो अक्षत की वजह से मीडिया और रिपोर्टर्स का वहां आना जाना लगा रहता और उनके इस घर के बारे में किसी को भी आधिकारिक तौर पर कोई खबर नहीं थी, इसीलिए उसके माँ बाप वहां पूरी सुरक्षा के साथ अकेले रहते थे। सुनैना सुबह उठने के बाद फिर से एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रही थी और रात को नैना वाली बात भी इस वक्त उसके दिमाग से निकल गई थी। आदित्य ने भी उसे इस बारे में याद नहीं दिलाया और उसने सोचा कि जब उसे खुद ही याद आएगी तो वो नैना से बात कर लेगी या फिर हो सकता है नैना खुद ही उसे फ़ोन करे ये बात बताने के लिए। इसलिए आदित्य ने सुनैना को डिस्टर्ब नहीं किया और तैयार होकर वहां रूम से बाहर निकलने लगा। सुनैना का पूरा ध्यान पढ़ाई में था, लेकिन आदित्य के वहां मौजूद होते हुए ऐसा हो नहीं सकता था कि वो उसे नोटिस न करे, इसलिए आदित्य को चुपचाप अकेले ही वहां रूम से बाहर निकलते हुए देखकर सुनैना ने उसे पीछे से टोका, कहाँ जा रहे हो चुपचाप ऐसे बिना बताए, ये दबे पाँव निकल जाने वाली आदत तुम्हारी जाएगी नहीं ना। उसकी बात सुनकर आदित्य दरवाजे के पास पहुंचने से पहले ही रुक गया और फिर पीछे मुड़कर सुनैना की तरफ देखते हुए बोला, क्या यार सोना, तुम तो ऐसे शक करती हो जैसे कि मैं अपनी किसी सीक्रेट गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। सुनैना ने गुस्से में अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, क्या पता सीक्रेट गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो या फिर दूसरी वाइफ से, क्योंकि चुपचाप निकलते तो ऐसे ही हो कि मुझे पता भी ना चले और बताना तो तुम कभी भी जरूरी नहीं समझते। सुनैना की ये बात सुनकर आदित्य को थोड़ा बुरा लगा, भले ही वो समझ रहा था कि सुनैना सीरियस होकर ये सारी बातें नहीं बोल रही है, वो सिर्फ उसे ताना मारने के अंदाज में ही ये सब बोल रही है, लेकिन फिर भी आदित्य उसकी तरफ आया। सुनैना कुर्सी पर बैठी हुई थी तो उसने उसके कुर्सी के हैंडल पर हाथ रखकर उसके ऊपर झुकते हुए बोला, अच्छा तो जरा सा भी भरोसा नहीं है क्या तुम्हें अपने पति पर, और तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें कभी भी धोखा दे सकता हूँ सोना। इतना बोलते हुए आदित्य ने अपना सिर और ज्यादा नीचे झुकाया और सुनैना अपना चेहरा एकदम पीछे ले जाने लगी, क्योंकि आदित्य इस वक्त बहुत ज्यादा नाराजगी और इंटेंसिटी से ये सारी बातें बोल रहा था। उसकी आंखों में देखते हुए तो वो उसकी नजर भी नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि उसने तो ये बात ऐसे ही गुस्से में बोल दी थी, क्योंकि आदित्य जाने से पहले उसे नहीं बता रहा था कि वो कहाँ जा रहा था। आदित्य की आंखों में वो इंटेंसिटी देखकर सुनैना काफी अटकते हुए बोली, आदि आदि क्या क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना कि मैंने वो बात बस ऐसे ही बोल दी थी, आई डिड नॉट मीन इट। सुनैना को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांस भारी हो रही है आदित्य की नज़दीकी की वजह से, और उसका वो इंटेंस गेज भी वो खुद पर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, और इसी वजह से उसके मुंह से जैसे शब्द भी नहीं निकल रहे थे, और उसकी हालत खराब हो रही थी। उसकी पलकें बार बार झपक रही थी और उसके माथे पर पसीना भी था। आदित्य भी जब इतना ज्यादा आगे आ गया तो सुनैना की आंखों में देखते हुए उसे वो खौफ नजर आ रहा था, और वो इस तरह से सुनैना को परेशान करके काफी एंजॉय कर रहा था मन ही मन, लेकिन ये बात उसने अपने चेहरे पर नहीं दिखाई और उसके करीब आते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। सुनैना एकदम चौंक गई, और जब तक उसे कुछ समझ आता आदित्य उसे पैशनेटली किस करने लगा, और सुनैना की आंखें एकदम बंद हो गईं, और उसके किस में खोई हुई सुनैना भी कब उसका साथ देने लगी उसे खुद भी पता नहीं चला। लगभग 5 मिनट के उस इंटेंस पैशनेट किस के बाद अपने बालों में हाथ डालकर बाल पीछे करता हुआ आदित्य वापस सीधा खड़ा हुआ और मुस्कुराकर सुनैना की तरफ देखते हुए बोला, आई लव ओनली यू, तुम्हारे अलावा कभी कोई नहीं आ सकता, और ऐसा तुम कभी सोचना भी मत, नहीं तो अपना प्यार दिखाने के लिए मैं इसके आगे भी बढ़ सकता हूँ। सुनैना की आंखें अभी भी बंद थीं, लेकिन आदित्य की ये बात सुनकर उसने धीरे से आंखें खोली और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। फिर वो थोड़ा सा आगे आई और आदित्य की तरफ आते हुए उसने आदित्य की शर्ट का कॉलर पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बहुत ही मजबूती से बोली, हाँ तो ठीक है, बढ़ जाओ जितना भी आगे, मैंने भी कब रोका है तुम्हें, लेकिन अपना प्यार दिखाने के लिए ना तुम्हें इस किस की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारी आंखों में ही दिखता है, जिसे नकली गुस्से के पीछे छुपाने की तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो कभी मुझसे नहीं छुपा सकते।
इतना बोलकर सुनैना आगे आते हुए आदित्य के गले लग गई और उसके सीने पर अपना सर रखते हुए तसल्ली से अपनी आंखें बंद कर ली। आदित्य ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और फिर हल्के से उसके सिर पर चूम लिया। सुनैना को जैसे ही वो किस फील हुआ उसने हल्का सा मुस्कुराया और बोली, आदि तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि मैं तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ, शायद खुद से भी ज्यादा। एक बार खुद पर शक कर सकती हूँ मैं, लेकिन तुम पर कभी नहीं, क्योंकि भरोसा करना ही मैं तुमसे सीखा हूँ, तुम ही इस भरोसे की, इस प्यार की वजह हो। सुनैना की बात सुनकर आदित्य ने भी बिना पूछे ही उसे पूरी बात बता दी। हाँ मुझे पता है, लेकिन मजाक में या ताने में भी ऐसी बात मत बोला करो, और मैं बस हॉस्पिटल जा रहा था, अनय को कॉल किया था तो वो बहुत ही अजीब तरह से बात कर रहा था, पता नहीं क्या हुआ है उसे, मैं देख कर आता हूँ। अपनी पढ़ाई के आगे सुनैना इस बारे में भी भूल ही गई थी। कल से लेकर आज तक उसने अपने एग्जाम का आधे से ज्यादा कोर्स पूरा कर लिया था, लेकिन आधा अभी भी बाकी था, तो उसका सारा ध्यान अभी पढ़ाई में ही लगा हुआ था, क्योंकि अगले दिन उसका एग्जाम था। लेकिन आदित्य जैसे ही हॉस्पिटल जाने के बारे में बोला तो सुनैना थोड़ा सा पीछे हुई और अपना सिर उठाकर आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, अरे हाँ, अनय और मनस्वी हॉस्पिटल में हैं, इस बारे में तो मैं बिल्कुल ही भूल गई थी, चलो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। उसकी ये बात सुनकर आदित्य ने उसके दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए उसे पकड़ा और उसे खुद से थोड़ा दूर करते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, हाँ मुझे पता था तुम भी साथ चलने के लिए जरूर बोलोगी, बस इसीलिए तो नहीं बताया था पहले से तुम्हें, और तुम पढ़ रही हो ना, वही करो अभी फिलहाल, वही इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, और वहाँ पर क्या करोगी तुम, इतना किसी को जानती भी नहीं हो, मनस्वी से भी तुम्हारी कोई बातचीत नहीं होती, इसीलिए मैं अकेले ही जाता हूँ, मैं मैनेज कर लूँगा और जल्दी वापस भी आ जाऊँगा। इतना बोलते हुए आदित्य ने इस बार उसके माथे पर किस किया तो सुनैना की पलकें हल्के से बंद हुईं और फिर उसने दोबारा से अपनी आंखें खोलकर आदित्य की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया, क्योंकि आदित्य एक तरह से सही कह रहा था, इसीलिए सुनैना ने भी उसके साथ चलने की जिद नहीं की। और फिर आदित्य वहां से चला गया और सुनैना वापस अपने स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ाई करने लगी। वो पढ़ ही रही थी कि तभी उसका मोबाइल फोन रिंग हुआ और उसने देखा तो व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज थे। उसके व्हाट्सएप पर स्टडी मटेरियल भी ग्रुप में शेयर होता है तो इससे उसे काफी हेल्प हो जाती है, इसीलिए उसने तुरंत ही मैसेज और नोटिफिकेशन चेक किया, लेकिन ये मैसेज स्टडी से रिलेटेड नहीं थे बल्कि इसमें कुछ और ही लिखा हुआ था, इसीलिए सुनैना ने जब ओपन कर लिया था तो वो उसे मैसेज को पढ़ने लगी और वो मैसेज पढ़ते हुए सुनैना एकदम हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि इस तरह के मैसेज उसे कौन भेज सकता है। क्रमशः